हम अक्सर जब किसी नए राजा के जन्म या किसी बहुत बड़ी धार्मिक घटना के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही शांत और पवित्र सी छवि उभरती है।
हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर।
राइट। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, आसमान में एकदम सितारे चमक रहे हैं, चारों ओर एक ईश्वरीय शांति छाई हुई है और हर कोई बस खुशी मना रहा है।
जो कि हम अक्सर कहानियों में सुनते हैं।
बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये तस्वीर पूरी तरह से गलत हो, क्या हो अगर ये कहानी शांति और सुकून की नहीं बल्कि एक बेहद क्रूर राजनीतिक व्यवस्था, सत्ता के भयानक खौफ और खून खराबे के बीच शुरू हुई हो।
जो कि असलियत में हुआ भी था।
एग्जैक्टली। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है। हमारे पास डॉक्टर क्रेग कीनर के गॉस्पल ऑफ मैथ्यू के शुरुआती अध्यायों पर दिए गए लेक्चर नोट्स का एक बहुत ही शानदार संकलन है।
और ये नोट्स बहुत सी पुरानी धारणाओं को तोड़ते हैं।
हाँ, तो हमारा उद्देश्य इन नोट्स के जरिए पहली सदी के उस असली उथल पुथल भरे और खतरनाक माहौल को डिकोड करना है। हम एक ऐसे समय में गोता लगाने वाले हैं जहां एक तरफ एक पागलपन की हद तक शक की राजा है, दूसरी तरफ तारों को पढ़ने वाले विदेशी ज्योतिषी हैं और फिर रेगिस्तान का एक विद्रोही पैगंबर है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस कहानी की असली गहराई तक पहुंचने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस समय के सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक किरदार के दिमाग के अंदर झांकना होगा।
हेरोदेस द ग्रेट।
सही कहा, हेरोदेस द ग्रेट। हम किसी भी नए राजा के जन्म की अहमियत तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उस शासक की मानसिकता को ना समझे जो समय सत्ता की गद्दी पर बैठा था। हेरोदेस की कहानी बहुत ही पेचीदा है। देखिए, वो कोई आम यहूदी शासक नहीं था। ऐतिहासिक रूप से वो एक एडोमाइट था।
एडोमाइट मतलब वो पूरी तरह से यहूदी नहीं था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एदोम के लोगों को यहूदियों ने अतीत में एक युद्ध में हराकर जबरदस्ती, मेरा मतलब है उन्हें मजबूर किया गया था यहूदी धर्म अपनाने के लिए।
अच्छा।
तो इसलिए जो यहूदी कुलीन वर्ग था और जो आम जनता थी, वो हेरोदेस को कभी भी अपना सच्चा राजा नहीं मानती थी।
ओह, तो मतलब उनके लिए वो हमेशा एक बाहरी इंसान ही रहा होगा।
एग्जैक्टली, उनके नजरों में वो हमेशा एक ऐसा व्यक्ति था जो गद्दी का असली हकदार था ही नहीं।
और यही बात उसे हमेशा अंदर से खाई जाती होगी, क्योंकि अगर किसी राजा को पता हो कि उसकी जनता उसे दिल से स्वीकार नहीं करती है, तो वो सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
बिल्कुल, यही उसकी असुरक्षा की सबसे बड़ी जड़ थी। और इसी असुरक्षा ने ना उसे एक बहुत ही चालाक रणनीतिकार बना दिया था। उसने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए रोमन साम्राज्य के बड़े बड़े नेताओं के बीच अपनी निष्ठा बड़ी ही चतुराई से बदली।
मतलब पाला बदलता रहता था वो।
हाँ देखिए, पहले वो मार्क एंटनी का बहुत करीबी और वफादार दोस्त हुआ करता था, लेकिन रोम की राजनीति में जब बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और ऑक्टेवियन ने, जिसे आज दुनिया सम्राट ऑगस्टस के नाम से जानती है,
हाँ, ऑगस्टस सीजर।
राइट, तो जब ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी को युद्ध में हरा दिया, तो हेरोदेस के लिए हालात बहुत बहुत खतरनाक हो गए थे।
हाँ।
उसे तो मौत की सजा मिल सकती थी।
जाहिर है, दुश्मन का दोस्त होने के नाते।
पर वो देखे कितना चालाक था। वो तुरंत ऑक्टेवियन के पास पहुंचा और उसने बिना किसी डर के कहा, मैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का सबसे वफादार दोस्त था। इससे साबित होता है कि मैं कितना वफादार इंसान हूं।
क्या बात है।
हाँ, और वो आगे कहता है, अब अगर तुम मुझे अपना दोस्त बना लो तो मेरी ये वफादारी तुम्हारे लिए काम करेगी। और इतिहास का ये बहुत बड़ा विडंबनापूर्ण क्षण है कि ऑक्टेवियन इस बात से प्रभावित हो गया
और उसने हेरोदेस को गद्दी पर बने रहने दिया।
बिल्कुल, उसने हेरोदेस को सप्पा में बनाए रखा।
ये तो किसी आधुनिक अंडरवर्ल्ड या माफिया बॉस की तरह लगता।
हाँ, सही कहा। नहीं मतलब, जो अपनी पब्लिक इमेज को शानदार बनाने के लिए बड़े बड़े मंदिर, बंदरगाह और भव्य इमारतें बनवाता है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो बहुत महान है, लेकिन अंदर से वो इतना डरा हुआ है कि जरा सा शक होने पर अपने ही परिवार के लोगों को बेरहमी से खत्म कर सकता है।
आपका ये माफिया बॉस वाला उदाहरण ना, उस समय की स्थिति को एकदम सही तरीके से दर्शाता है। हेरोदेस का खौफ कोई सामान्य डर नहीं था, वो एक क्लिनिकल पैरानोया यानी एक मनोवैज्ञानिक बीमारी बन चुका था।
बीमारी?
हाँ, मतलब वो सच में पागलपन के स्तर पर था।
हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। उसने अपनी इस सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सबसे प्रिय पत्नी मरियमेने की हत्या करवा दी।
बाप रे।
अपनी ही पत्नी की? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर व्यभिचार और साजिश का एक झूठा आरोप लगा था। और इस क्रूरता का सबसे डरावना पहलू ये था कि बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दुख में डूब गया, तो उसने अपने महल के एक बहुत बड़े टावर का नाम अपनी उसी मृत पत्नी के नाम पर रख दिया।
ये तो हद दर्जे का पागलपन है। मतलब पहले किसी की हत्या करो और फिर उसी के नाम पर एक विशाल स्मारक बनवा दो, ताकि दुनिया देखे कि आप उससे कितना प्यार करते थे।
अजीब है ना? लेकिन बात सिर्फ उसकी पत्नी तक ही सीमित नहीं थी। मेरियमने का भाई, जो कि महायाजक या हाई प्रीस्ट था, वो अपनी जवानी और सुंदरता के कारण आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा था।
और हेरोदस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ होगा।
बिल्कुल नहीं। हेरोदस को लगा कि लोग इस नौजवान को राजा बनाना चाहेंगे। तो एक दिन महल में एक पार्टी के दौरान उस महायाजक की एक स्विमिंग पूल में रहस्यमयी तरीके से डूबने से मौत हो जाती है।
रहस्यमयी तरीके से?
हाँ, हेरोदेस ने इसे एक दुखद हादसा बताया, लेकिन जब आधुनिक पुरातत्वविदों ने यरीहो में उसके महल की खुदाई की, तो पता चला कि वो पूल सिर्फ 3 फीट गहरा था।
अरे, 3 फीट गहरे पानी में एक स्वस्थ नौजवान कैसे डूब सकता है?
ये तो साफ तौर पर एक सोची समझी हत्या थी, जिसे बस एक हादसे का रूप दिया गया।
ये हेरोदेस का काम करने का तरीका था। उसने अपने खुद के 3 बेटों को भी सिर्फ इस शक में फांसी पर लटका दिया कि वे उसकी गद्दी छीनने की साजिश रच रहे हैं।
अपने सगे बेटों को?
हाँ।
रोमन सम्राट ऑगस्टस, जो खुद कोई संत नहीं था, जिसने बहुत से खून किए थे, उसने हेरोदेस के इस पागलपन पर एक बहुत ही मशहूर तंज कसा था। ऑगस्टस ने ग्रीक भाषा में कहा था, हेरोदेस का बेटा होने से कहीं ज्यादा सुरक्षित उसका सुअर होना है।
सुअर होना? ऐसा क्यों?
क्योंकि एक यहूदी राजा होने के नाते हेरोदेस सुअर का मांस नहीं खाता था, इसलिए उसके सुअर तो सुरक्षित थे, लेकिन उसके अपने सगे बच्चे नहीं।
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब एक पिता अपने ही खून का प्यासा हो गया था।
और उसकी इस क्रूर मानसिकता का सबसे खौफनाक सबूत ना उसकी मृत्युशैया पर मिलता है।
अच्छा, मरते वक्त भी उसने कुछ किया था?
हाँ, जब हेरोदेस अपने आखिरी दिनों में एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी से मर रहा था, तो उसे अच्छी तरह पता था कि कोई भी उसके मरने पर आंसू नहीं बहाएगा, उल्टा जनता खुशियां मनाएगी।
जाहिर है, इतने अत्याचार के बाद तो लोग खुशी होंगे।
तो उसने अपने आखिरी दिनों में एक आदेश जारी किया। उसने राज्य के सभी प्रमुख और सम्मानित रईसों को एक स्टेडियम में कैद करवा दिया और अपनी बहन को आदेश दिया कि जैसे ही मेरी सांस टूटे, इन सभी रईसों को तीर मारकर मौत के घाट उतार देना।
क्या? लेकिन क्यों? उन रईसों का क्या कसूर था?
उसका तर्क ये था कि इस तरह पूरे राज्य में हर घर में सचमुच मातम छा जाएगा और लोग उसकी मौत के दिन रोने पर मजबूर हो जाएंगे।
हे भगवान, ये तो कोई शैतानी सोच सकता है।
शुक्र है कि उसकी मौत के बाद उसकी बहन ने इस क्रूर आदेश को लागू नहीं किया और उन सभी लोगों को आजाद कर दिया।
ऐसे डरावने, खूनी और घुटन भरे माहौल में, जहां गद्दी पर बैठा राजा इतना क्रूर हो, वहां अचानक किसी नए राजा के जन्म की खबर आना यरूशलेम की सत्ता के लिए किसी बड़े भूकंप से कम नहीं रहा होगा।
बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा झटका था।
और यहीं पर कहानी में वे रहस्यमयी लोग आते हैं जिन्हें इस नए राजा की तलाश थी, मैजाई, जिन्हें हम अक्सर ज्ञानी पुरुष या ज्योतिषी कहते हैं। लेकिन डॉक्टर कीनर के नोट्स पढ़ने पर पता चलता है कि ये पूरी घटना कितनी अप्रत्याशित थी।
इस घटना का सबसे दिलचस्प पहलू यही है। देखिए, मैजाई वास्तव में फारसी ज्योतिषी थे। वे बहुदेववादी या पारसी धर्म को मानने वाले लोग थे, जो सितारों और ग्रहों की चाल से भविष्य पढ़ते थे।
लेकिन यहूदी धर्म में तो ये सब मना था ना?
बिल्कुल मना था। प्राचीन यहूदी धर्म में सितारों को देखकर भविष्य बताना या ज्योतिष विद्या का अभ्यास करना पूरी तरह से वर्जित था। यहूदी कानून के अनुसार इसके लिए मौत की सजा तक का प्रावधान था।
फिर भी वो लोग वहां पहुंचे।
हाँ, और विडंबना देखिए, ईश्वर ने इन गैर यहूदी दूर देश के ज्योतिषियों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए ठीक उसी माध्यम का इस्तेमाल किया जिसे वे समझते थे, यानी आकाश में तारों या ग्रहों की चाल।
मतलब उन्हें उनकी ही भाषा में समझाया गया।
एग्जैक्टली। खगोलविदों का मानना है कि ये शायद बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर का कोई विशेष संरेखण रहा होगा, जिसे प्राचीन दुनिया में राजाओं और राजशाही का प्रतीक माना जाता था। और ये कोई छोटी यात्रा नहीं थी।
हाँ, फारस से यरूशलेम आना कोई आसान काम तो नहीं था।
उन्होंने रेगिस्तान के खतरनाक रास्तों से होते हुए हफ्तों या शायद महीनों का लंबा और थका देने वाला सफर तय किया होगा।
ये सच में हैरान करने वाला है। जो लोग धार्मिक रूप से बिल्कुल बाहरी थे, जिनका यहूदी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो उस खगोलीय संकेत को समझ गए और इतनी मुश्किल यात्रा करके आ गए। लेकिन जब वे यरूशलेम पहुंचे और हेरोदेस से मिले, तब कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। हेरोदस ने घबराकर तुरंत अपने धार्मिक विशेषज्ञों, पुजारियों और शास्त्रियों की एक बैठक बुलाई।
और उन विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया ही ना इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है।
वो कैसे?
जब हेरोदस ने उनसे पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ होना है, तो उन्हें धर्मग्रंथों के पन्ने भी नहीं पलटने पड़े। उन्हें मीका नबी की भविष्यवाणी अध्याय 5 श्लोक 2 पूरी तरह से जबानी याद थी।
मतलब उन्हें रटा हुआ था सब कुछ?
हाँ, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया बेथलहम में। उन्हें सटीक जगह पता थी जो यरूशलम से मुश्किल से 6 मील की दूरी पर थी।
और यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा अचंभा होता है। मतलब मान लीजिए किसी के पास दुनिया का सबसे सटीक, सबसे उन्नत GPS सिस्टम हो, उस व्यक्ति को मंजिल का पता हो, रास्ता पता हो, सब कुछ स्क्रीन पर दिख रहा हो, लेकिन वो अपनी गाड़ी की चाबी घुमाने से या एक कदम भी आगे बढ़ाने से साफ मना कर दे। उन धार्मिक विशेषज्ञों ने बिल्कुल यही किया।
बिल्कुल,
उन्होंने मेजाई को रास्ता तो बता दिया, लेकिन खुद उनके साथ नहीं गए। ऐसा क्यों? क्या वो हेरोदेस के डर से चुप थे, या वो अपनी आरामदायक जिंदगी में इतने मगन थे कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी?
इस सवाल में ही उस समय के समाज की सबसे बड़ी त्रासदी छिपी है। वे मेजाई जो विदेशी थे, जिनके पास केवल एक तारे का सीमित संकेत था, उन्होंने रेगिस्तान पार करके अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।
हाँ, और अपनी जान भी जोखिम में डाली।
राइट, लेकिन जो धार्मिक विशेषज्ञ थे, जिनके पास पूर्ण ज्ञान था, जिन्हें भविष्यवाणियां जुबानी याद थीं, उन्होंने 6 मील का सफर तय करने की भी जहमत नहीं उठाई। वे सत्ता के गलियारों में अपनी सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी में ही सिमटे रहे।
ये तो बहुत ही निराशाजनक है।
ये पाठ हमें बताता है कि सिर्फ धार्मिक ज्ञान होना या तथ्यों को दिमाग में भर लेना ही काफी नहीं है। अगर वो ज्ञान इंसान को सही दिशा में कदम उठाने या कुछ ठोस कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो वो ज्ञान पूरी तरह से मृत है।
ज्ञान का कोई फायदा नहीं अगर उस पर अमल ना किया जाए। और उन धार्मिक विशेषज्ञों की इस निष्क्रियता का परिणाम बहुत ही भयानक हुआ।
बहुत भयानक।
वे विशेषज्ञ तो यरूशलेम में ही बैठे रहे, लेकिन हेरोदस ने तुरंत कदम उठाया। और उसका वो कदम था बेथलहम के 2 साल और उससे छोटे सभी मासूम बच्चों का बेरहम कत्लेआम। इस भयंकर घटना के कारण एक नवजात शिशु को रातों रात अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा।
इस पलायन में हम इतिहास को एक उल्टे क्रम में दोहराते हुए देखते हैं। इसे हम एक्सोडस या पलायन का एक विलोम कह सकते हैं।
विलोम मतलब उल्टा एक्सोडस।
हाँ, अगर हम इसराइल के पुराने इतिहास को देखें तो मिस्र वो जगह थी जहाँ इसराइल के लोग कई पीढ़ियों तक गुलाम थे और जहाँ से वो आजादी के लिए यरूशलेम की ओर भागे थे।
राइट, मूसा के नेतृत्व में।
लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट गई थी। यरूशलेम, जिसे शांति और पवित्रता का शहर माना जाता था, वो एक क्रूर हत्यारे राजा के कारण दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन गया था।
और मिस्र
जो कभी गुलामी और अत्याचार का प्रतीक था, वो इस नवजात शिशु और उसके परिवार के लिए एकमात्र सुरक्षित शरणांस्थली बन गया।
इसका मतलब है कि यीशु का शुरुआती जीवन एक शरणार्थी के रूप में, एक रिफ्यूजी के रूप में शुरू हुआ था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है।
बिल्कुल।
जो लोग आज दुनिया भर में युद्ध या सत्ता के खौफ के कारण अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं, जो हाशिए पर जीवन बिता रहे हैं, ये कहानी सीधे उनके संघर्ष और उनके दर्द से जुड़ती है।
ये नजरिया काफी महत्वपूर्ण है। और इसी पलायन को समझाते हुए ना, मैथ्यू अपने गॉस्पेल में होशे नबी की एक पुरानी आयत होशे 11.1 का संदर्भ देते हैं, जहां लिखा है, मिस्र से मैंने अपने पुत्र को बुलाया।
अच्छा, मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। होशे हुरुक्यारा 1 की ये आयत तो ऐतिहासिक रूप से पूरे इसराइल राष्ट्र के बारे में थी ना, जब वे मिस्र की गुलामी से बाहर आए थे?
हाँ, बिल्कुल थी।
तो क्या मैथ्यू ने अपनी कहानी को सही साबित करने के लिए इस पुरानी आयत को गलत संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने मुहावरे को जबरदस्ती नई स्थिति में फिट किया जा रहा हो।
यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मैथ्यू कोई गलती नहीं कर रहे, बल्कि वे पहली शती की यहूदी व्याख्या की एक बहुत ही गहरी और स्थापित परंपरा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अच्छा, वो परंपरा क्या थी?
प्राचीन यहूदी सोच में ना, मसीहा को केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं माना जाता था, मसीहा को संपूर्ण इसराइल का अंतिम प्रतिनिधि माना जाता था।
मैं समझ रहा हूँ।
मैथ्यू अपने पाठकों को ये बता रहे हैं कि इसराइल ने अपने लंबे इतिहास में जो भी अनुभव किया, चाहे वो मिस्र में जाना हो, गुलामी हो, वहां से निकलना हो, या रेगिस्तान में भटकना हो, यीशु भी ठीक उसी रास्ते से होकर गुजरेंगे।
मतलब यीशु अकेले पूरे इसराइल का चेहरा बन रहे थे। वो इसराइल की कहानी को अपने जीवन में फिर से जी रहे थे, इतिहास को फिर से लिख रहे थे, लेकिन इस बार बिना असफल हुए।
एग्जैक्टली
ये एक नए एग्जोडस की शुरुआत का ऐलान था। और फिर जब हेरोदेस की मौत की खबर आती है और वो मिस्र से वापस लौटते हैं, तो वो बेथलेम या यरूशलेम नहीं जाते।
नहीं, वे वहां नहीं जाते।
वे गैलिली के एक बहुत ही छोटे गुमनाम से गांव नाजिरात में जाकर बस जाते हैं।
इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण था। हेरोदेस द ग्रेट की मौत के बाद उसका राज्य उसके बेटों में बांट दिया गया था। यहूदिया का हिस्सा जहां बेथलेम और यरूशलेम थे, वो उसके बेटे अर्केलाउस के हाथ में आया।
और ये अर्केलाउस कैसा था?
इतिहासकार बताते हैं कि अर्केलाउस में अपने पिता की सारी क्रूरता और बुराइयां तो कूट कूट कर भरी थीं, लेकिन पिता जैसी राजनीतिक और प्रशासनिक कुशलता बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत ही अक्षम और सनकी था।
तो मतलब वहां रहना सुरक्षित नहीं था?
बिल्कुल नहीं। इसलिए जोसेफ ने अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए गैलिली का रुख किया, जहां नासरत स्थित था। लेकिन नासरत को चुनने के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं थी। मैथ्यू यहां हिब्रू भाषा के एक बहुत ही गहरे शाब्दिक खेल या वर्ड प्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डॉक्टर कीनर के नोट्स में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है।
हिब्रू भाषा का वर्ड प्ले, वो क्या है?
देखिए, यशाया नबी की पुस्तक में एक भविष्यवाणी है जहां मसीहा को दाऊद के वंश की एक शाखा या ब्रांच कहा गया है। हिब्रू भाषा में इस शाखा शब्द को नेटजर कहते हैं।
नेटजर?
हाँ, और नासरत गांव का नाम भी इसी मूल शब्द नेटजर से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो जब मैथ्यू कहते हैं कि वो नाजरीन कहलाएगा, तो वे दरअसल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये वही शाखा या नेटजर है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी।
ओह, ये एक बहुत ही गहरा थियोलॉजिकल संकेत था।
बिल्कुल।
छोटा गांव रहा होगा ना?
हाँ, एक बहुत ही छोटी सी बस्ती थी।
ऐसे में जोसेफ और यीशु, जो कि बड़ई या पत्थर का काम करने वाले कारीगर थे, उन्हें इस छोटे से गाँव में काम कैसे मिलता होगा?
ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। आर्थिक रूप से नासिरत ना एक बहुत ही रणनीतिक जगह पर था। नासिरत से सिर्फ 4 मील के पैदल दूरी पर सेफोरिस नाम का एक बहुत बड़ा और समृद्ध शहर था।
सेफोरिस?
हाँ, हेरोदेस की मौत के तुरंत बाद रोमनों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह को कुचलने के लिए रोमनों ने सेफोरिस शहर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था।
बाप रे, पूरी तरह से जला दिया?
हाँ, इसके बाद गैलीली के नए शासक हेरोदेस एंटिपास ने तुरंत सेफोरिस के भव्य पुनर्निर्माण का आदेश दिया। तो अगर कोई नासरत में रहने वाला बड़ई या राजमिस्त्री है, तो उसके लिए पास के शहर में निर्माण कार्य का एक बहुत बड़ा और निरंतर चलने वाला आर्थिक अवसर मौजूद था।
ये जानकारी तो एकदम नया नजरिया देती है। इसका मतलब है कि यीशु का बचपन किसी शांत कुटिया में नहीं, बल्कि एक ऐसे इलाके में बीता जहां रोमनों द्वारा की गई तबाही और फिर से चल रहे निर्माण कार्य के निशान हर तरफ मौजूद थे।
बिल्कुल, वो राजनीति और संघर्ष से अछूते नहीं थे।
इसके बाद नासिरत की इस खामोशी में लगभग 30 साल बीत जाते हैं, और फिर ये कहानी गैलीली के इन छोटे गांव से निकलकर सीधे रेगिस्तान की कड़कती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी में पहुंचती है, जहां हमें एक ऐसा किरदार मिलता है जो किसी भी स्थापित व्यवस्था के सांचे में फिट नहीं बैठता।
आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहे हैं?
हाँ, जॉन द बैप्टिस्ट।
पहली सदी के मशहूर इतिहासकार जोसेफिस ने यूहन्ना को रोमन दुनिया के सामने एक यूनानी दार्शनिक की तरह चित्रित करने की कोशिश की थी, ताकि बाहरी लोग उसे आसानी से समझ सकें।
एक ग्रीक फिलोसोफर? लेकिन वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं था ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। गॉस्पेल के नोट साफ बताते हैं कि यूहन्ना किसी वातानुकूलित महल या यूनानी विद्यालय से नहीं आया था। वो रेगिस्तान का एक विद्रोही पैगंबर था, जिसकी पूरी जीवन शैली चरम बलिदान और तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ एक खुले विरोध का प्रतीक थी।
उसका रहन सहन तो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। वो ऊंट के बानों से बने खुरदरे और चुभने वाले कपड़े पहनता था, जो सीधे तौर पर पुराने नियम के महान पैगंबर एलियास की याद दिलाते हैं। लेकिन उसका खानपान, टिड्डियां और जंगली शहद, आज के समय में तो ये डाइट सुनकर ही लोग हैरान रह जाएं। मतलब टिड्डियां कौन खाता है? उसने ऐसा अजीब खाना क्यों छोड़ा?
यूहन्ना का ये खानपान सिर्फ कोई शौक या तपस्या नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा राजनीतिक और आध्यात्मिक कारण था। टिड्डियां और जंगली शहद पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना प्रोसेस किया हुआ खाना थे।
अच्छा, इसका क्या मतलब है?
देखिए, हेरोदेस और रोमन साम्राज्य की जो कृषि अर्थव्यवस्था थी, वो भ्रष्टाचार, किसानों के शोषण और भारी टैक्स पर टिकी हुई थी। योहन्ना उस भ्रष्ट व्यवस्था से पैदा हुए अनाज या सुख सुविधाओं को पूरी तरह से नकार रहा था।
ओह, तो ये एक तरह का प्रोटेस्ट था।
हाँ, उसका ये आहार एक तरह का बहिष्कार या बॉयकॉट था। वो ये संदेश दे रहा था कि वो इस भ्रष्ट दुनिया के सिस्टम का हिस्सा नहीं है। उसका ये कठोर जीवन उसके संदेश को और भी ज्यादा प्रामाणिक बनाता था।
वो लोगों से क्या कह रहा था?
वो लोगों से सिर्फ अपनी सोच बदलने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि अपना पूरा जीवन, अपनी दिशा बदलने के लिए, सच्चे पश्चाताप के लिए बुला रहा था।
उसने जो सबसे बड़ा और सबसे विवादित काम किया वो था लोगों को जॉर्डन नदी में बपतिस्मा देना,
पानी में डुबकी लगाकर पाप धोने की बात करना।
लेकिन ये बात उस समय के यहूदी धार्मिक नेताओं के लिए इतनी झकझोरने वाली और अपमानजनक क्यों थी?
ये समझना बहुत जरूरी है कि पहली सदी के यहूदी समाज में पानी में इस तरह डुबकी लगाने का शुद्धिकरण अनुष्ठान मुख्य रूप से गैर यहूदियों के लिए होता था।
गैर यहूदियों के लिए?
हाँ, अगर कोई बाहरी व्यक्ति अपना पुराना धर्म छोड़कर यहूदी धर्म अपनाना चाहता था तो उसे ये बपतिस्मा लेना पड़ता था, जो उसके पिछले अशुद्ध जीवन को धोने का प्रतीक था।
लेकिन योहन्ना तो यहूदियों को बपतिस्मा दे रहा था।
एग्जैक्टली, योहन्ना जन्मजात यहूदियों से और यहाँ तक कि बड़े बड़े धार्मिक पुजारियों से भी कह रहा था कि उन्हें इस बपतिस्मे की जरूरत है।
मतलब वो उनसे कह रहा था कि तुम भी अशुद्ध हो।
हाँ, वह अनिवार्य रूप से यह कह रहा था कि सिर्फ इब्राहिम की संतान होने का टैग तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम भी ईश्वर की नजर में उतने ही पापी और अशुद्ध हो जितना कि कोई बाहरी गैर यहूदी व्यक्ति।
मान लीजिए कोई व्यक्ति पीढ़ियों से किसी बेहद महंगे एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब का सदस्य हो और उसे सारी सुविधाएं मुफ्त में मिल रही हों, और अचानक कोई उससे आकर कहे कि माफ कीजिए, आपकी आजीवन सदस्यता रद्द कर दी गई है, आपका पुराना कार्ड अब नहीं चलेगा, अब आपको बाहर जाके आम लोगों की लाइन में लगना होगा, दोबारा फॉर्म भरना होगा और अपनी योग्यता साबित करनी होगी। यह उन फरीसियों और सदुकियों के अहंकार पर एक बहुत बड़ा तमाचा था।
हाँ हाँ, ये वीआईपी क्लब वाला उदाहरण बहुत सटीक है। इस कहानी का सबसे विडंबनापूर्ण हिस्सा यही है। और जब वे फरीसी और सदुकी उस रेगिस्तान में योहन्ना के पास आए तो उसने उनका स्वागत किसी सम्मान या शिष्टाचार के साथ नहीं किया।
उसने क्या किया?
उसने भीड़ के सामने उन्हें सीधे सांपों का वंश या ब्रूड ऑफ वाइपर्स कहकर पुकारा।
सांपों का वंश आज भी यह सुनने में बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन क्या उस समय की संस्कृति में इसका कोई और भी गहरा छुपा हुआ मतलब था?
हाँ, और इससे भी गहरी बात यह है कि प्राचीन भूमध्य सागरीय दुनिया में ये मान्यता थी कि वाइपर सांप के बच्चे साधारण तरीके से अंडे से बाहर नहीं आते।
तो वो कैसे आते?
लोगों का मानना था कि वे अपनी माँ के पेट के अंदर ही जन्म लेते हैं और बाहर आने के लिए वे अपनी ही माँ का पेट फाड़ देते हैं, जिससे जन्म देते ही माँ की मौत हो जाती है।
बाप रे, ये तो बहुत भयानक है।
इसलिए जब योहन्ना उन धार्मिक नेताओं को वाइपर का वंश कह रहा था तो वो उन्हें सिर्फ जहरीला या चालाक नहीं कह रहा था, वो उन्हें अपने ही माता पिता के हत्यारे कह रहा था।
ओह, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप था।
बहुत गंभीर। वो ये आरोप लगा रहा था कि वे जिस इब्राहिम और मूसा की विरासत पर घमंड करते हैं, असल में अपने पाखंड और भ्रष्टाचार से वे उसी महान विरासत की हत्या कर रहे हैं। ये एक भयानक और गहरा अपमान था जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा।
बाप रे, ये तो शब्दों का कोई साधारण प्रहार नहीं था, ये तो सीधा दिल पर वार था। और इसी दौरान योहन्ना एक और चेतावनी देता है जो आज तक हमारे आधुनिक मुहावरों में शामिल है, आत्मा और आग का बपतिस्मा।
बैप्टिज्म बाय फायर।
हाँ, आज जब हम कहते हैं कि किसी का बैप्टिज्म बाय फायर हुआ है तो हमारा मतलब होता है कि किसी ने कोई बहुत मुश्किल काम पहली बार में ही सीख लिया या किसी में बहुत जोश और उत्साह आ गया है। हम अक्सर आग को सकारात्मक रूप में, पवित्रता के रूप में देखते हैं।
और आधुनिक ईसाइयत और सामान्य बोलचाल में ये सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है।
अच्छा, तो असल मतलब क्या था?
डॉक्टर कीना के नोट्स स्पष्ट करते हैं कि मैथ्यू अध्याय 3 के इस विशेष संदर्भ में आग का जोश या पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आग का मतलब सिर्फ और सिर्फ न्याय, विनाश और नरक की आग से है।
विनाश?
हाँ, इसे समझने के लिए हमें उस कृषि रूपक या मेटाफर को देखना होगा। वो भूसी और गेहूं को अलग करने की बात करता है।
हाँ, भूसी या चैफ, ये रूपक उस समय के किसानों के लिए बहुत आम बात रही होगी। वे इसे कैसे करते थे?
उस समय के किसान जब फसल काटते थे तो वे खलिहान में जाकर गेहूं और भूसी को एक सूप या फावड़े से हवा में उछालते थे। गेहूं का दाना भारी होता है, इसलिए वह सीधा जमीन पर नीचे गिर जाता था और उसे खलिहान में सुरक्षित रख लिया जाता था।
और भूसी का क्या होता था?
भूसी, जो बिल्कुल हल्की और बेकार होती है, उसे हवा दूर उड़ा ले जाती थी। किसान फिर उस सूखी भूसी को झाड़ू से इकट्ठा करके एक बड़ी आग में झोंक देते थे ताकि वो पूरी तरह जलकर राख हो जाए।
तो योहन्ना उसी आग की बात कर रहा था?
बिल्कुल, योहन्ना उसी भयानक आग की बात कर रहा था जो कभी बुझती नहीं। वो कह रहा था कि आने वाला मसीहा उसी किसान की तरह है जो न्याय करने आ रहा है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देंगे वे काट दिए जाएंगे और उसी आग में झोंक दिए जाएंगे।
इसका मतलब है कि वो वहां खड़ी भीड़ से ये कह रहा था कि जब आने वाला मसीहा आएगा तो वो कोई साधारण शांति दूत नहीं होगा। वो दुनिया को दो हिस्सों में बांट देगा। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा मिलेगी और बाकी जो पाखंडी हैं उन्हें न्याय की इस भस्म करने वाली आग का सामना करना पड़ेगा। ये कोई मीठा आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक रूह कंपा देने वाली चेतावनी थी।
और इसी चेतावनी के साथ योहन्ना उस आने वाले मसीहा की अकल्पनीय महानता को स्थापित करता है। वह पूरी विनम्रता के साथ कहता है, मैं उसके जूते उठाने या जूतों के फीते खोलने लायक भी नहीं हूँ।
ये तो बहुत ही विनम्र बात है।
हाँ, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा अर्थ है। उस जमाने में शिष्य अपने गुरुओं के प्रति बहुत गहरा सम्मान दिखाते थे और उनके लिए हर छोटा बड़ा काम करने को तैयार रहते थे। लेकिन रब्बी परंपरा के अनुसार एक स्पष्ट नियम था।
कैसा नियम?
एक काम ऐसा था जो कोई भी आजाद शिष्य अपने गुरु के लिए कभी नहीं करता था, और वो था गुरु के गंदे जूते उठाना या फीते खोलना। ये काम इतना नीचा माना जाता था कि यह सिर्फ और सिर्फ गैर यहूदी गुलामों के लिए आरक्षित था।
ओहो, और योहन्ना जो खुद इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली पैगंबर था, जिसके पीछे हजारों की भीड़ जॉर्डन नदी तक चली आई थी, वो कह रहा है कि मैं उस आने वाले मसीहा का गुलाम बनने के भी लायक नहीं हूँ।
इस एक वाक्य से योहन्ना स्पष्ट रूप से बता रहा था कि आने वाला व्यक्ति कोई साधारण इंसान, कोई राजा या सिर्फ एक और पैगंबर नहीं है। वह मसीहा को सीधे ईश्वर के स्तर पर रख रहा था,
यानी साक्षात याहवे।
बिल्कुल, वह लोगों को यह समझा रहा था कि जो सत्ता आ रही है वह हेरोदेस के सिंहासन, रोम की ताकत या फारिसियों के धर्मशास्त्र से कहीं ज्यादा बड़ी, पवित्र और न्यायपूर्ण है।
तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी गहन चर्चा और डॉक्टर कीनर के नोट से हम आज क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमने देखा कि इतिहास सिर्फ कुछ पुरानी तारीखों और पन्नों का उबाऊ ब्यौरा नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
ये सत्ता की उस गहरी असुरक्षा की कहानी है जो एक राजा को इतना अंधा कर देती है कि वो अपने ही परिवार का कातिल बन जाता है। ये एक ऐसे नवजात शिशु की कहानी है जो जन्मते ही विस्थापित हो जाता है, शरणार्थी बन जाता है और समाज में हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों के संघर्ष को महसूस करता है। और सबसे बढ़कर ये योहन्ना जैसे विद्रोही की कहानी है जो बिना किसी डर के स्थापित व्यवस्था को चुनौती देता है।
और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सबक हमें यरूशलेम के उन पुजारियों और धार्मिक विशेषज्ञों से मिलता है।
हाँ, वो जो 6 मील भी नहीं गए।
उनके पास सभी भविष्यवाणियां थीं, सारे शास्त्र थे और सटीक जानकारी थी, लेकिन वो सारी जानकारी उनके किसी काम नहीं आई, क्योंकि उसने उनके दिलों को नहीं बदला, उन्हें कोई कदम उठाने के लिए प्रेरित नहीं किया।
राइट।
ज्ञान अगर आपको अपनी सुरक्षित जगह से उठकर सही दिशा में चलने की हिम्मत नहीं देता, तो वो ज्ञान सिर्फ एक भ्रम है, एक मृत दस्तावेज है।
यही इस डीप डाइव का सबसे अहम संदेश है। जाने से पहले हम आपके सामने एक विचार छोड़ना चाहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज हमारे समय की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी सच्चाई अचानक हमारे सामने आ जाए, तो उसे सबसे पहले कौन स्वीकार करेगा? क्या हमारे समाज के वे स्थापित विशेषज्ञ, बड़े बड़े सत्ताधीश और सिस्टम उसे मानेंगे, जिनके पास सारी डिग्रियां, सत्ता और संसाधन मौजूद हैं? या फिर कोई बाहरी, अजनबी और हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति उस सच्चाई को सबसे पहले पहचानेगा? क्या हम भी सारी जानकारी होने के बावजूद उन यरूशलेम के पुजारियों की तरह अपनी सुरक्षित और आरामदायक जगह पर जमे रहेंगे, अपना सटीक GPS हाथ में लिए बस अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से डरते हुए? सोचिएगा जरूर।